समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। शाम के 4:30 हो चुके हैं और आइए हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और आज कार्यक्रम में डेडलाइन में हम बात करेंगे इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में।
Namaskar and hello Farhat. Yes, of course, we'll be going to the dateline very soon, but don't you feel the temperature is going up every day? It has become so hot during the day, not only in Delhi, but also in most of the cities in the whole of India. India's summer arrived early and a super El Nino is brewing. Heat waves have hit 11 states. In fact, Banda in UP touched 47.4 degrees centigrade. And forecasters say a possible super El Nino could stretch the heat throughout the year of 2026. The India Meteorological Department flagged heat wave conditions in 11 states and union territories, including Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh. With the temperatures rising, particularly in regions experiencing heat waves, it is crucial to take precautions against severe health risks. And authorities advise staying hydrated, avoiding direct sun exposure during peak hours, and monitoring for symptoms of heat exhaustion. Of course, looking into all these things, an advisory has also been issued by the government to protect the workers and labourers from all the adverse effects of a rising temperature and heat wave and to implement safety measures for workers, isn't it, Farhat?
Ji, bilkul Anuja, bahut zyada garmi ho rahi hai aur jo log bahar kaam kar rahe hain unke liye ghatak sidh ho sakta hai. To aise mein sarkar ne bahut sare kadam uthaye hain isse pehle ki schoolon mein bhi jo choti class ke bacche hain wahan par water bell ka intezam kiya gaya hai taki pani ki vyavastha ki जा सके। हर दो घंटे में जो है पानी के लिए एक बेल बजेगी जहां पर बच्चों को पानी पीने के लिए बोला जाएगा। इसके अलावा सरकार ने तापमान और लू के घातक असर से बचाने के लिए कामगारों मजदूरों को भी बचाने का निर्णय लिया है और उन्होंने नियोक्ताओं उद्योगों और निर्माण कंपनियों को तत्काल आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करने का निर्देश दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों प्रशासकों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने पीने का और काम करने और आराम करने के लिए ठंडी जगह की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है।
Stay indoors, especially between 10 a.m. and 4 p.m. and when it's the peak hours of hot temperature. Tune into Akashwani and listen to all the beautiful melodies and updates on what's going on around you. And here we are with all that's making headlines at this hour of the day. So let's begin our afternoon magazine right away. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates and lays foundation stones for multiple development projects worth 4,000 crore rupees at Gangtok. Also takes part in closing ceremony of Sikkim's 50th year of statehood celebrations.
Pradhan Mantri Modi aaj sham Uttar Pradesh ke Varanasi mein 6,300 crore rupees se adhik ki vikas pariyojnao ka anavaran karenge aur do nayi Amrit Bharat Express rail gaadiyon ko bhi ravana karenge.
Foundation stone laid for Google Cloud India AI Hub at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh in presence of Union Minister Ashwini Vaishnaw and Chief Minister N. Chandrababu Naidu.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किर्गिस्तान में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी. कहा आतंकवाद के केंद्र अब उचित दंड से अछूते नहीं रहेंगे.
All preparations in place for voting in second and final phase of assembly elections in West Bengal tomorrow.
और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम पंजाब किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से।
And now time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about India-New Zealand Free Trade Agreement. Today we are talking about a single agreement that could quietly unlock doors for millions of Indians, including farmers, small business owners, artisans, even young entrepreneurs dreaming big. That sounds powerful, right? But the real question is, what does that actually look like in real life?
बिल्कुल अनुजा, सूरत के किसी अगर कपड़ा मजदूर की बात की जाए या फिर कानपुर के किसी चमड़े के कारीगर की या फिर किसी ऐसे छोटे स्टार्टअप के संस्थापक के बारे में अगर सोचा जाए जो ऑनलाइन हाथ से बने उत्पाद बेचने की कोशिश कर रहा है, इन सभी को किस एक चीज की जरूरत है?
आई गेस दैट्स अपॉर्चुनिटी, एक्सेस एंड अ ग्लोबल स्टेज.
बिल्कुल बिल्कुल सही हो. और अब एक बहुत बड़ी चीज बदल गई है. भारत ने न्यूजीलैंड के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है. और ये सिर्फ कोई आम पॉलिसी अपडेट नहीं बल्कि ये गेम चेंजर भी है.
Absolutely, because for the first time, 100% of Indian exports to New Zealand will face zero duty. Yes, you heard it right, zero. So when Indian goods travel across oceans, they don't carry extra cost burdens anymore.
केरल से ऑर्गेनिक मसाले बेचने वाली एक छोटी से व्यवसायी की अगर बात की जाए, पहले ज्यादा ड्यूटी का मतलब था ज्यादा कीमतें और विदेशों में उनके लिए कम खरीदार, लेकिन अब वही उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ज्यादा प्रतिस्पर्धी, ज्यादा किफायती और कहीं ज्यादा आकर्षक बन गया है.
वन चेंज एंड मैसिव रिपल इफेक्ट, बट देयर इज मोर टू इट. दिस एग्रीमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रेड नंबर्स, इट ब्रिंग्स अ $12 billion इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स. That kind of investment builds industries, it creates jobs, strengthens India's global presence. So let's hear it from Mr. Piyush Goyal himself.
The free trade agreement is very comprehensive, very forward-looking. While it opens the doors for goods and services in a massive way, it also has an investment commitment which will encourage businesses to leverage the strengths and scale that India offers. It will also encourage Indian businesses to look at New Zealand market both for access in goods and services and potential investment. We are looking at partnerships also on agricultural field.
और अनुजा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे अहम बात यह है कि ये डील एमएसएमईज और महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों पर खास ध्यान देती है. इसीलिए अगली बार जब आप किसी महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे किसी देसी ब्रांड को देखें या किसी छोटी स्थानीय इकाई को आगे बढ़ते हुए देखें, तो इस बात की पूरी संभावना है कि इस तरह की नीतियां चुपचाप उनकी इस यात्रा में उनका साथ दे रही हैं.
नाउ आवर लिसनर्स माइट बी वंडरिंग दैट व्हाट अबाउट आवर फार्मर्स. वेल, India has carefully protected its key interests in dairy and agriculture. At the same time, through an agricultural productivity partnership, farmers will get opportunities to improve productivity and connect to global value chains.
बिल्कुल अनुज, और ये बिल्कुल ऐसा ही है. भारतीय किसान न केवल देश का पेट भर रहे हैं बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का भी हिस्सा बन रहे हैं. अब ये केवल एक सपना नहीं रहा और कपड़ा और चमड़ा जैसे क्षेत्रों के लिए जिनमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, ये एक बहुत बड़ी बात है.
Indeed, Farhat, lower barriers mean more exports mean more demand, and more demand means more jobs. It's a full circle of growth.
जी, स्वास्थ्य सेवा की अगर बात की जाए या फिर पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में, ये नए द्वार खोल रहे हैं. पहली बार न्यूजीलैंड स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सेवाओं को सुगम बना रहा है.
So when the world looks toward Ayurveda or Indian wellness practices, India isn't just participating, India is leading.
जब कोई देश परंपरा को नवाचार के साथ, स्थानीय शक्ति को वैश्विक पहुंच के साथ और नीति को देश के साथ जोड़ता है, तो हमें केवल आर्थिक विकास ही नहीं मिलता, हमें एक ऐसा राष्ट्र मिलता है जो अपने लोगों को सशक्त बनाता है, अपनी जड़ों की रक्षा करता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ विश्व मंच पर कदम रखता है.
एंड दिस इजंट ओनली अबाउट ट्रेड एग्रीमेंट्स, इट्स अबाउट every Indian dream getting a little closer to the world. Today we can proudly say that India is not waiting for opportunities anymore. India is actually creating them. And moving on towards our next topic of Dateline, it's Sikkim's 50th year of statehood this year.
Ji Anuja. सिक्किम के गंगटोक में स्थित प्रतिष्ठित पालजोर स्टेडियम में ये उत्सव केवल राज्य के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये एक यात्रा को सम्मानित करने और भविष्य को आकार देने का भी अवसर था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगटोक में 4000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और उनकी आधारशिला भी रखी.
Yes, he also announced 6 cricket academies for the Northeast region. He launched the projects at the closing ceremony of the Sikkim's 50th year of statehood celebrations. And standing right there, addressing the nation, Prime Minister Modi said he called Sikkim as the heaven of the East. The government has placed top priority on connectivity and infrastructure in Sikkim.
बिल्कुल अनुजा, क्योंकि जब सड़कें बेहतर होती हैं, जब पहुंच आसान हो जाती है, तो एक विद्यार्थी स्कूल जल्दी पहुंचता है, एक किसान अपनी उपज बड़े बाजारों तक भेज पाता है और एक पर्यटक किसी छिपे हुए रत्न को बड़ी आसानी से खोज लेता है.
Certainly, Farhat, development doesn't stay on paper, it reaches people, and that's exactly what 4,000 crore rupees worth of projects aim to do. A family from Delhi planning a peaceful vacation, they decide to go to Sikkim.
और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वही एक यात्रा ज्यादा बुकिंग, ज्यादा स्थानीय आय और ज्यादा रोजगार के अवसरों में बदल जाती है। वो छोटा सा होमस्टे मालिक, वो स्थानीय गाइड, वो सड़क किनारे वाला कैफे, उनकी दुनिया सचमुच बदल जाती है।
But Sikkim isn't only about tourism. It has quietly achieved something extraordinary. It became a leader in organic and natural farming. In a world worried about chemicals and health, organic farming represent trust, purity and sustainability. Let's hear it out from Prime Minister Modi himself.
आज ऑर्गेनिक फूड्स को प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे खुशी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम इस फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का बड़ा केंद्र है। सिक्किम ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। सिक्किम ने तो 10 साल पहले 2016 में ही पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया था। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं। ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती का सिक्किम का मॉडल पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है।
बिल्कुल अनुजा, सिक्किम जो है पूरे देश को दिखा रहा है कि ये कैसे किया जाता है। फिर एक ऐसी चीज आती है जो दिल के और भी करीब है, स्वास्थ्य सेवा। आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीबों को और यहाँ तक कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को मुफ्त हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
And have you noticed how talent from the Northeast is shining everywhere these days, Farhad? From football grounds to national arenas, young athletes from Sikkim are stepping forward.
जी बिल्कुल, क्योंकि खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहलों के साथ उनकी क्षमता को आखिरकार वो मंच मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं।
And then came a moment that truly captured India's soul. A grand performance, 1,000 steps of unity with over 1,500 artists. Different cultures, different rhythms, but one spirit. It reflected the essence of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
बिल्कुल, एक भारत श्रेष्ठ भारत। पूर्वोत्तर को अक्सर अष्ट लक्ष्मी यानी समृद्धि के आठ रूपों के नाम से पुकारा जाता है और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में संस्कृति, प्रकृति और प्रतिभा और विकास के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
With ongoing and upcoming projects, that potential is now turning into reality. Earlier today, Prime Minister Modi even played football with local youth and visited the Orchidarium at Ridge Park, not as a formal leader, but as someone connecting with people, their passions, their everyday life.
जी अनुजा, और ये सिर्फ 4000 करोड़ की परियोजनाएं के बारे में नहीं है, ये सिर्फ एक उत्सव के बारे में नहीं है, ये एक विजन के बारे में है जहाँ एक छोटा सा राज्य एक बड़ी प्रेरणा बन जाता है। भारत की विविधता हमें बांट नहीं रही है बल्कि ये हमारी प्रगति को और मजबूत बना रही है। और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है विशेष।
एंड वी टेक यू ऑल टू केरला। Kerala is once again in grief. More than a dozen people were killed in an explosion at a firework facility linked to the famed Thrissur Puram. A report.
On April 21st, a tragic firecracker explosion at Mundathikoda near Thrissur claimed around 14 lives and left many others injured. What began as a celebration quickly turned into panic, flames and heartbreaking loss. Such incidents are not new to Kerala. We still remember the Kollam Puttingal temple tragedy of 2016, where over 100 people lost their lives in a fireworks disaster. Even during Thrissur Puram, minor and major fire-related mishaps have been reported over the years. This raises a serious question. Are fireworks truly essential for our festivals? Across temples, churches and mosques, fireworks have become symbol of celebration. But when they are repeatedly lead to loss of life, it is time to rethink their place in our traditions. And beyond fireworks, there is another concern. Elephant processions, a familiar and admired part of Kerala festivals. But behind the grandeur lies a different reality. Elephants are made to walk long distances, stand for hours under the harsh summer sun, and endure loud noise and crowds. There have been several incidents of elephants turning violent under stress, resulting in injuries and deaths. Festivals are meant to celebrate life, faith and togetherness. They are indeed colorful and deeply rooted in our culture. But the sufferings and risks associated with them cannot be ignored. The Mundathikoda tragedy is yet another reminder. Safety cannot be secondary to spectacle. Authorities may bring in stricter rules, but real change must come from all of us. Can we celebrate operate without endangering lives? Can we preserve tradition while ensuring safety and compassion? That is the question before Kerala today. Because true celebration should never come at the cost of human life or silent suffering. Anil Chandran for Parikrama, Akashvani News, Kozhikode.
और अब बात करते हैं जनगणना 2027 के बारे में, क्योंकि वहां पर स्वयं गणना की प्रक्रिया इस महीने की 26 तारीख से तेलंगाना में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हैदराबाद के लोक भवन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता की पेश है ये रिपोर्ट।
The governor registered his details online and launched the census in the state. Speaking on the occasion, the governor called the census one of the most important national exercises, saying that accurate data is essential for planning better policies in areas like education, healthcare, employment, housing and infrastructure. He also reminded everyone that this is the first census to be held after the formation of Telangana state, making it especially significant for the state's future growth. He urged every citizen to participate actively and provide clear, correct information. Union Minister for Coal and Mines Kishan Reddy also completed his self-enumeration at Dilkusha Guest House in Hyderabad. He said that census figures act as a guiding light for the nation's future and that accurate data is necessary for India to assert its strength on international platforms. He added that every citizen who provides correct information is indirectly contributing to the development of their own region. Chief Minister Revanth Reddy too completed his self-enumeration from his residence through the official census website and called on all people of Telangana to actively take part in this important exercise. The self-enumeration process will continue until May 10th, followed by house listing operations from May 11th to June 9th. What makes this census truly special is that it is India's first fully digital census, where citizens can register their details easily from the comfort of their own homes through the online portal. Saptagiri for Parikrama, Akashvani News, Hyderabad.
वहीं अरुणाचल प्रदेश में खोंसा पश्चिम के विधायक चकत अभो ने नागरिकों से जनगणना का सटीक डेटा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। ये अपील ऐसे समय में की गई है जब पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं।
अरुणाचल प्रदेश खोंसा वेस्ट एमएलए चकत अभो अर्ज सिटीजन्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द नेशनल सेंसस एंड गिव एक्यूरेट डेटा, सेइंग दैट इट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। द एमएलए मेड द अपील आफ्टर कंप्लीटिंग हरसेल्फ इनुमेरेशन एज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेंसस 2027। रेजिडेंट्स हैव ऑल्सो बीन रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट विद इनुमेरेटर्स एंड सुपरवाइजर्स ड्यूरिंग हाउस लिस्टिंग विजिट एंड शेयर रेफरेंस डिटेल्स इफ सेल्फ इनुमेरेशन इज ऑलरेडी डन। अर्लियर इन नामसाई डिस्ट्रिक्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन कंप्लीटेड हिज सेल्फ इनुमेरेशन फॉर सेंसस 2027, setting an example for the public to participate in it. Namsa MLA Chow Jignu Namchum and JPC Chow Sujana Namchum also completed their self-enumeration and encouraged citizens to actively engage in this important national exercise. For Parikrama, this is Manoj Kumar Sharma, Akashvani, Itanagar.
And now we take you all to Ladakh, where in a significant development reflecting both administrative efficiency and spiritual facilitation, the first caravan of Ladakhi pilgrims for Hajj 2026 was flagged off from Kharul today. We have more on this from a correspondent.
The Regional Deputy Commissioner Kargil Shabir Hussain, along with Chairman Hajj Committee Ladakh Muhammad Ali Majaz, flagged off the caravan amid emotional scenes, prayers and warm send-offs by family members and well-wishers. The first batch, comprising 144 pilgrims, will proceed via Srinagar and is scheduled to depart from Medina on April 30. In total, 325 pilgrims for Ladakh have been selected for the Skier journey this year. The subsequent batches will depart in phase, with the final group scheduled to leave on May 5th. Speaking on the occasion, officials highlighted that after Ladakh attained the status of Union Territory, people across the region have begun to experience tangible progress, not only in development but also in spiritual facilitation. Strengthened infrastructure, improved connectivity and focused governance have enhanced public service, while dedicated institutions like the Hajj Committee Ladakh are ensuring smoother and more organized arrangements for pilgrims. The positive transformation is reflected in the seamless coordination of Hajj 2026, where pilgrims from remote areas are now receiving better logistic support, guidance and care. The efforts of the administration and the Hajj Committee have significantly eased the journey of the Hajis, enabling them to focus on their spiritual aspirations with greater comfort and dignity. For Parikrama, this is Anad Ali from Kargil Union Territory of Ladakh.
And now coming to the business news, benchmark domestic equity indices fell around 0.5% today. The Sensex slipped 417 points to close at 76,887, while the Nifty dipped 97 points to settle at 23,996. However, the broader market indices on the National Stock Exchange ended in the green. The mid-cap 100 added 0.3%, while the small-cap 100 rose 0.4%. Earlier, the market opened on a tepid note, tracking mixed trends in global equities. The Sensex and Nifty turned positive for a while, but lost momentum during afternoon trade and ended lower amid the monthly expiry of Nifty futures and options contracts. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading down at 1,50,127 rupees per 10 grams, while silver was also trading down at 2,38,339 rupees per kilogram when reports last came in. And for more updates about the market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 PM this evening. Varhat, खेल के मैदान के बारे में बताइए
जी अनुजा और बात करते हैं खेल में आईपीएल क्रिकेट की आज पंजाब किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा यह मैच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हरा दिया और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन
In today's episode, we remember social reformer Madhusudan Das, who was born on the 28th of April 1848 at Cuttack district, Odisha. He founded Utkal Sammelani in 1903 that successfully campaigned for the creation of Odisha on the 1st of April 1936. The first graduate and advocate of Odisha, he is also known as Kulabruddha, Grand Old Man, and Utkal Gaurab, the Pride of Utkal. In Odisha, his birthday is celebrated as the Lawyer's Day on the 28th of April.
Madhusudan Das started Desh Mishra Andolan and worked hard for the social, political and economic uplift of the people of Eastern India. He rendered his admirable service to the nation as a very successful lawyer, social reformer and patriot. He was acclaimed as a great legislator and journalist. He was the first Odia to be the member of the Legislative Council and member of Central Legislative Assembly. He had the distinction of being the first Indian minister.
He was also an excellent orator in Odia, English and Bengali. As a writer and poet, patriotism was always at the forefront of his mind, and that was reflected in all his literary works. He penned a number of articles and poems in both English and Odia. Some of his important poems are Utkal Santan, Jati Itihash and Jananir Ukti.
Madhusudan Das died on the 4th of February 1934 and by the time of his death, he had spent all his property on the well-being of the people of Odisha. His immense contribution towards the state and nation would be admired forever. We salute the great nationalist.
We also remember martyr Kehar Gajan Singh, who was beaten to death in prison by the British authorities on the 28th of April 1925. A resident of Hoshiarpur, Punjab, Singh joined the peaceful Sikh Jatha to Jaito Gurudwara, Gangsar, Nabha in 1924 against the British order prohibiting all prayer assemblies.
The Jatha was stopped by the orders of Wilson Johnston, the administrator of Nabha, and the police arrested a number of its members. Gajan Singh was also arrested and beaten to death in Nabha Bir Jail on the 28th of April 1925. We salute the great son of the soil.
We also remember independence activist Narayan Singh, who took part in the first war of Indian independence in 1857. Initially a sepoy in the English East India Company Army in Khandesh, Maharashtra, Singh fought the British at different places in Khandesh. He was caught while defending the British attacks and was charged with desertion and mutiny against the British. He was sentenced to transportation for 10 years. And died in the Andaman Islands on the 28th of April 1860.
And moving on, on his death anniversary, we pay our respectful tributes to the Gyanpeeth Award-winning novelist poet and writer, Padma Shri Dr. Vinayak Krishna Gokak, whose work continues to inspire generations. Vinayak Krishna Gokak was one of the popular writers in the official language of Karnataka, that is Kannada. He was also a scholar in English as well as Kannada literature. He was one of the top five writers who was bestowed with an award for his outstanding contribution to literature in 1994, Bharat Sindhu Rashmi in Kannada language. It is one of the epics of Vedic age, which is the largest narrated epic in the 20th century. He was awarded Padma Shri Award for this. And Bharat Sindhu Rashmi, if we talk about that, is the longest epic written in the century and it ran for approximately 35,000 lines.
जी अनुजा बिल्कुल, और ये 20वीं सदी के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक है और इसी के लिए इन्हें 1990 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था. इसके अलावा उनकी कई सारी रचनाएं समरसवे जीवन, काव्य संग्रह ध्वा पृथ्वी, समुद्र गीत गलू काफी लोकप्रिय रहे और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया. इसके अलावा 1960 के दशक में उन्होंने कई सारी सत्य साई बाबा के ऊपर किताबें भी लिखी जिसमें उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए. इसके अलावा 1961 में पद्मश्री, 1961 में साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सम्मानित किया गया.
And we also pay tribute to T.V. Sundaram Iyengar, the man behind TVS Group, who changed bus service into auto empire. His journey from a lawyer to an industrial magnate is a testament to how persistence, adaptability and strategic thinking can create a lasting legacy. He was a man of ambition and vision. His entrepreneurial spirit led him to explore other fields. After working in the Indian Railways and a bank, he realized his passion lay elsewhere, building something of his own. And in 1911, Sundaram Iyengar made a bold move by founding TV Sundaram Iyengar and Sons Limited in Madurai. He introduced the first organized public bus transport service in the Madras Presidency. This set a new standard in regional mobility and sowing the seeds for a business empire that would grow for generations.
जी बिल्कुल अनुज, और उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बहुत जरूरी है. बस सेवा से शुरू हुआ ये सफर धीरे धीरे ऑटो पोर्ट्स, मोटर कंपनी, वित्तीय सेवाओं तक फैला और आज टीवीएस ग्रुप भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक माना जाता है. इसके अलावा उन्होंने जो है एक ऐसे ऑटोमोबाइल उद्योग को जो है आगे ख्याति प्राप्त करवाई जो आज भी लोग याद करते हैं. इसके अलावा टीवीएस ग्रुप भारत के बड़े व्यापारिक और औद्योगिक घरानों में से एक माना जाता है.
And today we also commemorate Bhanu Athaiya, the Oscar-winning creative genius who transformed Indian cinema with her timeless costume designs and became the first Indian to win an Oscar. It is her birth anniversary today. Her meticulous work on Gandhi captured historical accuracy, for which she was highly acclaimed. From redefining on-screen style to dressing the Mahatma in Gandhi, her artistry lives on in every sari, silhouette and story she touched. The iconic designer outfitted a host of actors in a long list of movies that include names like CID in the year 1956, the movie Vakt and Guide, Teesri Manzil and Amrapali, and then it was Brahmachari, Lagan, Swadesh, and the list is ongoing.
जी अनुजा, भानु अथैया ने 100 से भी अधिक फिल्मों के लिए डिजाइनिंग कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा चुकी थी और फिल्म जगत में अपने खट्टे मीठे अनुभवों के साथ कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और फैशन में आए बदलावों को उन्होंने हाल ही में प्रकाशित पुस्तक भानु राजोपाध्याय में प्रकाशित भी किए हैं. ये सारी बातें उन्होंने वहां पर जिक्र की है.
And today we also wish a very happy birthday. And most of us, we remember him as Raju Rastogi from Three Idiots or Sukhi Ram from Rang De Basanti. But I'm talking about Sharman Joshi, the actor who stepped into those roles. He has far more to offer us. For over 26 years, he has quietly won the hearts of people on stage through theatre and on screen through films, web series and even a stint on television. As he turns 47 today, Akashvani wishes him a very happy birthday and best wishes in the years to come. He started with a role in the art film Godmother in 1999 and since then, there has been no looking back.
और रनुजा, आज के दिन हमें अलविदा कहा. बॉलीवुड, दक्षिण भारतीय और अंग्रेजी फिल्मों में अभिनय करने वाले टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सलीम गौस ने धारावाहिक भारत एक खोज और सरदारी बेगम और सोल्जर जैसी कई फिल्मों में अभिनय से उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई. एफटीआईआई से अपना एक्टिंग कोर्स पूरा करने के बाद सलीम गौस ने साल 1976 में पहली बार एक्टिंग की श्याम बेनेगल की मंथन फिल्म से और तभी से ये सलीम गौस श्याम बेनेगल साहब के फेवरेट एक्टर्स में से एक बन गए. और अब इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अनुजा और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।